یہ ہے 21486 کا پراتھ کلاس 12 نمبر کے رجسٹر میں 106 پیس 21 اپریل 56. گیت ہے تمہیں ہو ماتا پتا تمہیں ہو, تمہیں ہو بندھو سخا تمہیں. یہ مہما کس کی ہے؟ جس کو سوائے تم بچوں کے دنیا میں اور کوئی نہیں جانتے. یہ ہے اونچتے اونچ باپ کی مہما. کیسے باپ کی مہما؟ اونچتے اونچ باپ کی مہما. اونچتے اونچ کہاں ہوتے ہیں؟ کون سے لوک میں؟ ساکار لوک میں ہی اونچتے اونچ, اور ساکار لوک میں ہی نیچتے نیچ بھی. تو اونچتے اونچ باپ کی مہما ہے جس کی مہما کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سب فالتو ہو جاتا ہے. اونچتے اونچ ایک ہی ہے باپ, لیکن باپ کی پہچان کون دے دے؟ تو خود ہی آ کر کے آتما اور اپنی پہچان دیتے. کوئی بھی منشی کی آتما کو بھی پہچان نہیں. بھل کہتے ہیں مہان آتما. جیو آتما شریر جب چھوٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں آتما نکل جاتی, شریر مردہ ہو جاتا ہے. آتما اویناشی ہے, وہ کب ختم نہیں ہوتی. آتما اسٹار مثل ہے, وہ اتی سوکشم ہے, ان آنکھوں سے دیکھنے میں نہیں آتی. کرتویہ سب آتما کرتی, پرنتو گھڑی گھڑی دیہ ابھیمان میں آ جاتے ہیں. تو میں فلانا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. واستو میں کرتی تو سب کچھ آتما ہے, شریر تو آرجن. یہ سادھو آدھے لوگ جانتے ہیں تو آتما بہت سوکشم ہے, جو برکوٹی کے بیچ رہتی ہے. پرنتو ان کو گیان نہیں ہے کہ آتما میں سنسکار ہیں پارٹ بجانے کے. اچھا ہوا برا کرتویہ کرنا آتما کا کرنا. آتما میں یہ پارٹ بجانے کے سنسکار اویناشی ہے, یہ کوئی نہیں جانتے. کوئی کہتے ہیں آتما میں سنسکار ہوتے ہی نہیں. آتما تو نرلیپ ہے. کوئی لیپ چھیپ نہیں لگتا کرموں کا. کوئی کہتے ہیں سنسکار انوسار جنم ملتا ہے. تو مت بھید بہت ہو جاتے ہیں. یہ بھی کس کو پتا نہیں ہے کہ کون سی آتما 84 جنم لیتی ہیں. تم جانتے ہو کہ سوری ونشیوں کو ہی 84 کا چکر لگانا پڑتا ہے. آتما ہی 84 کا چکر لگا کر کے پتت بنی ہے. اب ان کو پاون کون بنا دے؟ 84 کا چکر لگانے والی جو آتما پاون تھی, پاون سے پتت بنی, اس کو پاون کون بنا دے؟ کیا 83 جنم لینے والے, 82 جنم لینے والے؟ یہ آل راؤنڈ پارٹ بجانے والا. پتت پاون اونچتے اونچے ایک ہی باپ ہے. ان کی مہما سب سے اونچی ہے. 84 جنم سب تو نہیں لے سکتے. پ पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके। किसके पीछे पीछे आने वाले कौन है? जरूर पीछे आने वाले हैं, तो किसी के तो पीछे आने वाले हैं। चौरासी जन्म तो ले नहीं सकते, क्योंकि सब इकट्ठे तो आ ही नहीं सकते, एक के पीछे एक ही आना है। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। तो पहले पहले जन्म में कौन हुए? जो सतयुग में आते हैं सूर्यवंशी राजे और उनकी प्रजा, जो पहले पहले आते हैं। जैसे सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा, पहला पत्ता अकेला आएगा क्या? साथ में भी कुछ आत्माएं होंगी जो आएंगी। तो पहले दो पत्ते जो आए वो तो महाराजा महारानी हो गए, बाकी और जो आए वो प्रजा हो गई। तो ऐसे ही संगम युगी दुनिया में जो 21 जन्मों में से पहला जन्म है, डायरेक्ट पाप से प्राप्ति करने वाला, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। पहले सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उनके 84 जन्म होते हैं। पीछे वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है, कोई जल्दी मर नहीं सकता। ये बातें बाप भी बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को जानते नहीं है, बाप कहते हैं कि जैसी आत्मा है वैसे ही मैं परमात्मा। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। अंतर क्या बताया? तुम निश्चय निश्चय के चक्र में आते हो। निश्चय है तो जैसे जीवित है, और निश्चय टूट गया तो जैसे मृत्यु हुई। मैं नहीं आता हूं, मुझे बुलाते भी सब हैं, और तब बुलाते हैं जब पतित बनते हैं। भक्ति मार्ग में दिन प्रतिदिन दुख होता रहता है, इसलिए बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ाए रहे। किस समय? संगम युग में। कोई पूछते हैं ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो फिर उनको समझाना है कि सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो क्या झूठा पुकारते हैं? आओ तो जरूर आते होंगे ना। अब वो तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आना भी पतित दुनिया में है, पावन दुनिया में तो आएंगे नहीं। तो ऐसे समझाना चाहिए। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कौन? अभी प्रजापिता की तो नाम शब्द ही नहीं आया, इसकी बात आ रही। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कौन? शिव बाबा का नाम आया। शिव बाबा शब्द बोला ही नहीं, प्रजापिता शब्द बोला ही नहीं, हैं? परमात्मा बोला। तो परम आत्मा का मतलब क्या हुआ? परम आत्मा, परम शब्द लगाया है जिससे सुप्रीमेसी जाहिर होती है, यानी किसी से भेंट है। किससे भेंट है? 500 करोड़ मनुष्य आत्मा आत्माओं से भेंट की गई। तो भेंट किससे की जाएगी? कोई समानता वालों से भेंट की जाएगी या जिसमें कोई समानता ही नहीं उनसे भेंट की जाएगी? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो चक्र काटती और उनमें कोई ऐसी भी आत्मा है जो स्मृतियों के चक्र नहीं काटती, खास करके संगम में जब परमात्मा मिल जाता है तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जिसका कोई बीज नहीं। माना वो बाप है जिसका कोई बाप मनुष्य नहीं हो सकता, वो टीचर बनता है जिसका कोई मनुष्य टीचर नहीं हो सकता, वो सदगुरु है जिसका कोई गुरु नहीं हो सकता, मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो, तो मैं जरूर आऊंगा ना। गैन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराए देश अर्थात रावण के देश में आए। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय अर्थात अपने देश में रहने वाले थे, फिर द्वापर से लेकर हम पराए रावण राज्य में आ जाते, वाम मार्ग में आ जाते। वाम मार्ग क्यों कहा? दाया मार्ग क्यों नहीं कहा? धर्म की डालियां तो दोनों तरफ चलती हैं, लेफ्ट साइड में भी चलती हैं तो राइट साइड में भी चलती हैं। फिर ये क्यों कहा कि वाम मार्ग में आ जाते हैं? द्वापर से धर्मों की जो डालियां फैलती हैं वो तो दोनों तरफ फैलती हैं ना, तो वाम मार्ग इसलिए कहा कि जो विदेशी धर्म है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो ज्यादा पावरफुल होता है उसके प्रभाव में सब आ जाते हैं। तो स्वदेशी धर्म भी उनके प्रभाव में आते रहते, इसलिए टोटल वाम मार्ग कहा। वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग। स्वदेशी और विदेशी में उल्टा मार्ग क्या हुआ? वाम मार्ग माना व्यभिचारी मार्ग। व्यभिचारी अर्थात विकारी। अव्यभिचारी अर्थात निर्विकारी। तो अव्यभिचारी धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म। तो जहां इंद्रियों का व्यभिचार होता है, अनेकता है, वही वाम मार्ग है, उल्टा मार्ग। दूसरे देशों में अर्थात वाम मार्गी धर्मों में, विदेशों में अनेकता और अनेक प्रकार के संसर्ग संपर्क और संबंध बुरे नहीं माने जाते, उन धर्मों में ये छूट है कि ज्यादा से ज्यादा शादियां करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। भारतीय परंपरा में ये अच्छा नहीं माना जाता। भारतीय जितने भी धर्म हैं उन सब में ब्रह्मचर्य को विशेष मान्यता दी गई है। जो विदेशी धर्म हैं उनमें ब्रह्मचर्य को कोई मान्यता नहीं है, तो वाम मार्ग कहा जाता है, तो भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं, वो लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो नहीं है ना। बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? पूछा तो बिंदु है, फिर बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? हाँ, क्योंकि साकार में वो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। जिस साकार का रूप आग का गोला दिखाया जाता है, लाइट का गोला, वो स्थूल लाइट की बात नहीं है, वो तो ज्ञान की लाइट है। ज्ञान की लाइट शरीरधारी के द्वारा ही निस्सृत होगी, बाहर आएगी, मुख के द्वारा ही ज्ञान सुनाया जाता है। तो बोला वह लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वो नहीं है, है तो बिंदु, क्योंकि उसमें जो आत्मा लिंग में कार्य करती है, लिंग रूप शरीर में ज्ञान सुनाने वाली है, वो तो बिंदु है। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। आत्मा में परमात्मा में फर्क का क्या पता? पहले भी बताया। हाँ, आत्माएं जितनी भी हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आती है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है, और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में, निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। वो नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर। दूसरा पे ये परमात्मा की महिमा है ना। महिमा किस समय की यादगार है? संगम युग की। तो संगम युग में ऐसा पार्ट बजाने वाला कोई पार्टधारी होगा ना साकार में, जो सदा सुख का सागर, आनंद का सागर और सदा पावन होगा। जब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वह है परमपिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है, बुलाते किसको है? हैं? परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं कि निराकार गॉड फादर। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ पराई देश में, क्योंकि सब पति तो बन चुके हैं, मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी संगम युग योग्य हूं, ये किसी को पता नहीं। बुलाते भी हैं कि वह परमात्मा है, वो बिंदी है। आजकल फिर कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा सो हम आत्मा, तो ये किसकी नकल करते हैं।